ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 23 तारीख की साकार वाणी है। विशेष बाबा ब्राइड ग्रूम बनकर के हम सब ब्राइड्स बाबा की सजनियां उनका ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर घर ले जाने के लिए आया है। उसके बाद हमारे राज्य में भेजेंगे जहां सुख शांति और पवित्रता होगी, तो इस दुखों की दुनिया से छुड़ा कर ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने एक बात बताई है कि ड्रामा, उसमें प्रेजेंट को बहुत खूबसूरत बनाना है, तो फ्यूचर तो खूबसूरत होगा ही, तो प्रेजेंट पर अटेंशन देना है। और सेवा के लिए बाबा ने एक बात बताई है कि जब भी किसी को कुछ सुनाते हैं तो बाबा ने कहा कहीं कुछ लिखते हैं तो हर पन्ने पे होना चाहिए भगवान उवाच, तो तीर लग जाएगा, क्योंकि कर्म करावन हार बाबा है, वो करा रहे हैं, ये स्मृति रहे। इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं भगवान उवाच, हर पन्ने पे आज बाबा ने कहा वो होना चाहिए, तो सेवा सहज हो जाएगी। तो सुनते हैं बाबा के ही महावाक्य, बाबा के ही शब्दों में। 23 तारीख की बाबा की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। सुख के दिन आए कि आए तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। मुख्य बात है कि हमारा अटेंशन बाबा के साथ, हमारी दुनिया बाबा, बाबा ही हमारा संसार है। प्रश्न, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ, प्रेजेंट, आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, नथिंग। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी, धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, ये देश हमारा नहीं, रावण की दुनिया है। तो हम कहां से आए? पराए देश से आए। अब इस पराए देश में कैसे है? पराए देश में दुखी है, इसीलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाबा भी खुशी से आते हैं। बच्चों के पास बाबा भी खुशी से आते हैं। जानते हैं, मैं जाता हूं बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर राजाई में भी भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना, बात करते रू रिहान करते ही बाबा को बुलाया कि इस दुख की दुनिया से, छिछी दुनिया से ले चलो। तो बाप आया है तो आत्मा बाप से बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हो, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। मिल रहा है ना सभी को, खुशी का खजाना मिल रहा है ना। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी चाहिए, कितनी अपार खुशी चाहिए। बहुत समय के दुख के दिन होते हैं और फिर खुशी का क्षण भी क्या करता है, अपार खुशी दे देता है। बाबा कहते हैं हमको इस पुरानी राजधानी में ही आना है, हमको तो अपने राज्य में ले जाते, लेकिन उसके लिए बाबा को आना तो पराए राजधानी में है। बाबा का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते, रचयिता को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते हैं, क्या कराते हैं, यह भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे करवाते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूं, पाप आत्माएं तो सब है, इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान झरझरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जंगल जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग को बुझाए। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। ड्रामा को याद रखना है, लेकिन उस वक्त उस घड़ी याद आना चाहिए नथिंग न्यू। बाप अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है, सीधा सीधा नहीं बोलना है, युक्ति से लिखना है। शुबाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब है, ऑल ब्रदर्स, तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है, शुबाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आकर सच्चिदी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसीलिए उनको हेवन कहा जाता है, वह दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सबका विनाश कराने निमित्त बनता हूं। सत्युग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूं, ऐसा धंधा तो और कोई कर नहीं सकते। स्थापना के लिए आते हैं धर्म के, लेकिन विनाश साथ करे ऐसा तो कोई कर नहीं सकते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहां ही है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है। पहले तो हमारी तरह ही पुरुषार्थी, लेकिन फरिश्ता बनने के बाद ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देनी पड़े ना, चित्र हो तो इजी हो जाता है। समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं, उनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया, परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। भले 84 के चक्र में नहीं आते, लेकिन उस चक्र को जानते हैं, जानते हैं, हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं करें कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सत्युग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान थे, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई हो नहीं सकता, भारत जैसा पवित्र देश कोई हो नहीं सकता। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहां गए ये अभी तुम जानते हो। और किसी की बुद्धि में थोड़ी होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं, ऐसे तो किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। और किसी की बुद्धि में थोड़ी होगा, अभी तुमको सारा ज्ञान है, तुम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, कैसे कैसे देवी देवताओं के चित्र बनाए, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सभी नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे, बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे, पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं, तो अब खुशी होती है कि हम, खुशी क्या होती है, हम पूज्य थे पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहां तो अल्पकाल की खुशियां मनाते हैं, वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं लेकिन बाबा कहते उसको बुलाने के लिए नहीं होती, दीपमाला होती है। लक्ष्मी का राज्य होता है, गद्दी पर बैठती है अर्थात कॉरोनेशन पर, बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहां होते नहीं, वह तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि सनातन, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, यह सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग और यह है राजयोग। बाबा कहते हैं पहले पहले पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर होना चाहिए। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, खुद यहां प्रेजेंट है ना, किसके मां वाक्य है, बाबा के, तो खुद यहां प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान वाच्य होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा, ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, इनकी आत्मा भी सुनती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत बहुत लव होना चाहिए, यह तो उनका रथ है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है ब्रह्मा द्वारा, ये ब्राह्मण बनते हैं फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है, भल अपना भी चित्र दो ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला, योगबल से हम ऐसे बनते हैं। अपना सिंपल पोज भी होना चाहिए और लक्ष्मी नारायण के ड्रेस में भी होना चाहिए। रशिया में जाते हैं तो जो भी जाते हैं उनको क्या करते हैं, वो ड्रेस पहनाते हैं। फिर अब कितना बाकी है, कंपेयर करना है, मुझे ये बनना है। उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं, अपने ही चित्र को देखते देखते मनुष्य से देवता बन जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देख करके खुश हो जाए। प्रदर्शनी चित्र भी किताब भी ऐसी रंगीन हो, इतना अच्छा हो जो देख करके खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हैं हो गरीबों के लिए, बड़े से छोटा छोटे से छोटा कर सकते, रहस्य इसमें आ जाता है। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गीता पर कृष्ण का चित्र और इस गीता पर, हमारी गीता पर कौन सा चित्र? त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझने में सहज हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहां है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताएं नमा, विष्णु देवताएं नमा, अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहां राज्य करते थे, डिटिजम तो है ना, तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहां है, चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्प को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएगी। बाबा सिद्ध हो जाएगा तो बाबा जो कहता है वो सत्य है, वो सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं, बाबा तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? वहां तो मूवी है। यह सब समझने की बातें हैं। यहां तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में, कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहां से नंबर वार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसा ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाएंगे। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, यह लड़ाई लगी, नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ न सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो बहुत वंडरफुल है। नई नई बातें सुनेंगे तो कहेंगे बातें तो बहुत वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवान वाच्य बच्चों प्रति, ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं ना, कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहां एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वही अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए, बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी है। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है, पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का, बाबा है पांडवों का सिरमौर। कह कहते हैं, हे बच्चे मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर, फिर बड़ी यात्रा होगी। घर जाने के बाद बड़ी यात्रा कौन सी होगी? अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएगी, जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उसके पिछाड़ी सब भागते हैं। सबसे बड़ी यात्रा कौन सी? मूल वतन की। सारी सारी आत्माएं जाएंगी, वंदन है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो। शिव की बारात है तो तुम सब हो ब्राइड्स। मैं ब्राइडग्रूम हूं, आया हूं सबको ले जाने। तुम छिछी हो गए हो, इसीलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसा है। समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहे हैं। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए क्या कहते, मोचरा खाकर मानी मिले तो क्या फायदा। तो सजा खाकर पद कम हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। ऐसे ही नहीं जैसे भक्ति में करते थे। अभी बाबा की एक एक बात समझनी है और एक एक कर्म ध्यान से करना है, क्योंकि ज्ञान के बाद अगर कोई गलत कर्म करते हैं तो उसका 100 गुना दंड मिलता है। तो ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे। अब तुमको ऐसा तो नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, अपार खुशी में रहने के लिए, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाप, आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं, आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में जाएंगे। वरदान, समस्याओं को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करने वाले, समस्याओं को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणी भव। मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा का बच्चों से इतना प्यार है, जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रू रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाबा की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन, सहज योगी जीवन। दादी की विशेषता, पेपर आना माना लक्की बनना। मैं वेरी वेरी लक्की हूं, मैं वेरी वेरी लक्की हूं। दादी जी कहती, मैं तो वेरी वेरी लक्की हूं। भले दुनिया के अनेक विघ्न आते हैं, एक के बाद एक पेपर आता है, लेकिन मैं अपने लक को, भाग्य को कभी भूलती नहीं हूं। पत्थर भी पूजनीय तब बनता है जब पानी की अनेक चोटें खाता है। अनुभव के आधार से इसीलिए बाबा भी कभी किन्हीं बातों से थको नहीं, इसीलिए आप भी कभी किन्हीं बातों से थको नहीं। अगर पेपर ही नहीं दिया तो विजयी कौन मानेगा। हजार पेपर आए तो भी मैं 1000% पास हूं, 100% पास हूं। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। परीक्षाएं कहां से आएगी? अपने इस ब्राह्मण परिवार से ही आएंगे। तो सारा ही ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। कोई भी मेरे सामने आता तो बुद्धि में यही रहता कि यह मेरे में रूहानियत भरकर जाएगा, यह मेरे में रूहानियत भरकर जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन में जो भी भाई बहने ट्रायल रूप में समर्पित होने के लिए रह रहे हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। हम सभी जानते हैं कि यज्ञ के वरिष्ठ दादियों ने, दीदियों ने एक पिछले वर्ष से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की रचना की है। जैसे टीचर्स बहनों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है, ऐसे ही भाइयों के लिए भी एक ट्रेनिंग कार्यक्रम की रचना की गई है। इस वर्ष भी वो फिर से होने वाला है, तो उनके लिए सूचना है कि मधुबन के सभी स्थान, शांतिवन, पांडवन, ज्ञान सरोवर तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रायल वाले भाइयों के लिए मन मोहिनी वन में, पिछले वर्ष मानसरोवर में हुआ था, इस वर्ष मन मोहिनी वन में दिनांक 1 सितंबर से 10 सितंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी ट्रायल वाले भाइयों को ट्रेनिंग करना जरूरी है। जो ट्रेनिंग करने के इच्छुक है वह अपना फॉर्म भरकर 26 अगस्त तक जमा करा दे। जिन्होंने पिछले साल ट्रेनिंग की है उन्हें दोबारा या ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंट इंचार्ज अपने ट्रायल वाले भाइयों को इस ट्रेनिंग की स्वीकृति अवश्य दे। और ये जो फॉर्म जमा कराने के लिए शांतिवन में आवास निवास विभाग में मौलिक भाई को दे सकते हैं, और पांडव भवन और ज्ञान सरोवर के ट्रायल वाले भाई पांडव भवन में जीतू भाई टोली किचन के पास दे सकते हैं, और हॉस्पिटल में यशोदा बहन जो एडमिन ऑफिस में है ग्लोबल हॉस्पिटल में, उनको अपने फॉर्म भरवा करके दे सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं हमारे बीच में शायद पहली बारी भारती दीदी जी बाबा के महावाक्य सुनाने के लिए उपस्थित है। हम एक हाथ की ताली से अवश्य उनका अभिवादन करते हैं। और अभी समय से क्लास पूरा हुआ है तो जरूर 10 मिनट आप अपने अनुभव हमको सुनाएं, क्योंकि हम जानते हैं अनेक वर्षों से जब से लोटस हाउस बना है आदरणीय भारती दीदी जी विशेष वहां पर सेवाओं के निमित्त हैं, आदरणीय सरला दीदी और दादियों ने विशेष आपको वहां पर निमित्त बनाया है, तो कैसे आप वहां पर इन सेवाओं पर उपस्थित हुए, तब से यज्ञ में आपकी एक अनोखी पहचान भी है, तो और भी जो आपके अनुभव है आपके जीवन के विशेष हम सुनना चाहेंगे। अभी है 10-15 मिनट सुना सकते हैं।
ओम शांति। अनुभव 10 या 15 मिनट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबा ने जो भाग्य बनाया, बाबा के घर में कैसे रहने आए वहां से ही थोड़ा शुरू करेंगे। वैसे बचपन से ही बाबा के ज्ञान में चलते हैं, पापा ज्ञान में चलते थे तो उनके साथ साथ आते थे, और कई बार कुमारी जीवन में उनके साथ बड़े बड़े ग्रुप लेकर के यहाँ शिविर कराने के लिए उनके साथ आया जाया करते थे। और जब मन में संकल्प आया कि यही जीवन जीना है, क्योंकि बाबा ने तो पहले से ही वरदान दे दिया था, लास्ट पांडव भवन में जब बाबा आए थे, बाबा से मिलने का मौका मिला था, तो बाबा तब पर्सनली मिलते थे, तो बाबा ने कहा था कि बच्ची मेरी बनोगी ना, तो उस वक्त तो पढ़ाई चल रही थी, शायद 12th में थी, तो बाबा पूछ रहा है तो हाँ कर दिया, लेकिन उसका मतलब समझा नहीं। और बाबा ने एक वरदान दिया, बच्ची रेडी ब्रह्मा कुमारी हो, तो उसका भी अर्थ पता नहीं था। फिर पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन में थोड़ी कंपैरिजन चल रही थी दिमाग के अंदर, क्योंकि बचपन से ही ज्ञान में थे, इसलिए नींव तो थी और बाबा के संग में भी रहे तो उसका भी असर था। तो जीवन तो यही जीना है, ये अंदर से तय कर लिया था। लेकिन उस वक्त घर से छुट्टी मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल था, क्योंकि पापा के साथ बिजनेस भी करती थी और वो हार्ट पेशेंट थे, हमने ही उनसे बिजनेस शुरू करवाया। फिर हम ही बंद करने के लिए कहे तो वो सब पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अंदर से लक्ष्य था तो हम एक बार ऐसे ही चले गए गांधीनगर सेंटर पे, ऐसे मणिनगर सेंटर को बिलोंग करते हैं, तो कैलाश दीदी के पास गए और रहना शुरू कर दिया। 7 महीना हुआ था तो उस वक्त लोटस हाउस खरीदा गया था, बहुत छोटा लोटस हाउस था तो उस वक्त खरीदा गया था। तो दादी ढूंढ रही थी कि किसको रखे किसको रखे, तो उस वक्त दादी जानकी थोड़ा हेल्थ इश्यू के हिसाब से सुख शांति भवन आई थी और उनसे मिलना हुआ। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी उन्होंने कहा कि मुझे इनको ही रखना है। तो दीदी ने तो बहुत कहा कि ये तो बंधन वाली है, इसको छुट्टी नहीं मिलेगी कुछ भी है। तो उन्होंने कहा जो भी है आप इसके पिताजी को बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया और पिताजी से कैसे छुट्टी ली क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन तब से छुट्टी मिल गई। तो दादी ने बंधन तोड़ा, दादी जानकी ने, और सेंटर पर रहे। लेकिन उसी वक्त मुझे बुला लिया दादी ने गांधीनगर से, 1 मास तक दादी सुख शांति में थी और दादी ने ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि विदेशों के साथ कनेक्शन था, उनके ही अंदर में था। तो उन्होंने 1 मास के लिए उनके साथ रखा और ट्रेनिंग दी और सेंटर की भी शुरुआत हमारे से ही कराई। जो भी सामान चाहिए सेंटर के लिए, जो भी खरीदी करनी है वो भी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। तो बंधन तो छूटा, लेकिन मैं कहूंगी क्योंकि 10 मिनट में ही सुनाना है, तो इतने छोटे से घर में रह करके कोई बाहर वालों की सेवा नहीं लेकिन ब्राह्मणों की ही सेवा करनी थी। तो ब्राह्मणों की सेवा करते करते ऐसे कहेंगे घर छोटा था, मंदिर छोटा था, लेकिन भक्त ज्यादा थे, बहुत लोग आने जाने वाले थे और उनको सॉल्वेशन देना और भेजना ये काम था। लेकिन दादी ने सिखाया कि साधन न होते हुए भी अगर हमारी इच्छा है सभी को सॉल्वेशन देने की, और ये याद है कि ये भगवान का कार्य है, तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार से हमें सिखाया। उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई पूना से लेकर के लंदन तक की, उनकी त्याग तपस्या और कैसे सभी का सहयोग लेकर के वो भी कार्य पूरा करते थे, एक ही कमरे में रह करके सब कुछ करते थे, सबको गिट्टी खिलाना, प्यार देना, पालना देना और उनसे काम लेना। तो मैं कहूंगी छोटा सा मकान था लेकिन वो जैसे कि सारी सोसाइटी हमारी थी। उनके साथ इतना अच्छा संबंध बना करके रखना और उनके घरों को यूज करना, उनकी चीज वस्तुओं को यूज करना, यहां तक कि दूध खुटे तो भी फ्रिज खोल के ले आ सकते थे, आटा खुटे तो भी ले आ सकते थे, चावल खुटे तो भी ले आ सकते थे। तो वो सत्युग के दिन मैं कहूंगी कि लोग तो कहते हैं वो त्याग तपस्या होती है, जो दादियां भी सुनाती है कि सराहना नहीं है तो ईंट रख करके दादियां सोई। तो इतने सारे आते हुए इनको सॉल्यूशन देते हुए भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम कर रहे हैं। बल्कि आज उस दिनों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सतयुग के रियलिटी के दिन थे, क्योंकि सतयुग में ही बार्टर सिस्टम होता है, तो हरेक की चीज का उपयोग करना, यहां तक कि रिसीव करने जाते थे तो खुद के पास एक स्कूटर जैसी चीज नहीं थी। आज तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, लेकिन उस वक्त स्कूटर जैसी भी चीज नहीं थी, और एयरपोर्ट पे रिसीव करना है 2 बजे 3 बजे 4 बजे सारा दिन, तो किसी की भी गाड़ी उठाई और रिसीव कर लिया। तो एयरपोर्ट पे बल्कि मुझे कहते थे आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, तो हंसी आती थी कि है कुछ भी नहीं, जो दादी बोलती है ना, पॉकेट में पैसा नहीं फिर भी सारे मुल्क का वही राजा। तो ऐसे था वो समय, तो मैं कहूंगी कि वहां से शुरू किया, आज बड़ा छोटा लोटस, फिर न्यू लोटस, डायमंड लोटस है, इतना विस्तार हुआ। परंतु ये जीवन इसके बीच का ऐसे हंसते खेलते, जैसे हम लोग मूल्यों का अध्ययन करके, किसी से ज्ञान सुन के, ज्ञान पढ़ करके जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमने कभी नहीं किया। बड़ों से सुना, बड़ों का जीवन देखा, प्रैक्टिकल लाइफ देखी, और उनका जीवन देख करके हमने समझा ज्ञान क्या है। तो उनकी जीवन कहानी पढ़ी, उनकी जीवन को देखा, तो यज्ञ के हमारे जो भी बड़े हैं, जितनी भी दादियां हैं, उनके करीब रहने का मौका मिला, उनके जीवन को देखने का मौका मिला, ज्ञान को अच्छे से समझने का मौका मिला। तो तीनों ही दादियों की अगर मैं विशेषता सुनाती हूं, तो ऐसे कहती हूं कि बड़ी दादी थी तो बाबा ने उनको विल किया, बाबा ने उनको विल किया, सब कुछ अर्पण किया, और दादी ने सब कुछ किया। तो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर जो थी वो हमारी प्रकाशमणि दादी थी, जिनका मास चल रहा है, उनको आटे दाल का भाव, सुई से लेकर मकान तक, आप बता दो सिर्फ कि इतना स्क्वायर फीट जमीन है, दादी बता देती थी इसमें इतने कमरे बनेंगे, इतने लोग रह सकते हैं, इतना खर्चा होगा। तो उनको हर चीज का पता था, और वो हरेक को पर्सनली जानते थे, हरेक के पर्सनल गुणों को जानते थे, और उसके आधार से वो सेवा देते थे। तो वो बाबा की ब्लेसिंग्स थी उनके ऊपर, बाबा ने हर चीज उनको विल की थी। लेकिन मैं जानकी दादी को देखा बहुत करीब से, उन्होंने एक एक चीज अपनी मेहनत से कमाई हुई। बाबा से जैसे पुरुषार्थ कर वो चीज को प्राप्त किया है, तो हम भी भले हमारे में कुछ भी ना हो, कोई गुण ना हो जो यज्ञ के अंदर काम नहीं आता, लेकिन अगर हमारे अंदर चाहना है, विल है, तो हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसे दादी जानकी का जीवन था। दादी जानकी कई बार कहते थी कि संदेशी तो संदेश लाएगी और मुझे बताएगी, लेकिन मैं तो स्वयं डायरेक्ट बाबा से बात करती हूं और बाबा को कहती हूं ऐसा होना चाहिए। तो उनकी विल पावर थी, उनकी अपने मन की शक्ति थी, जो इतने उच्च पद पर दादी आई, एक एक चीज जैसे कि हासिल की थी, पुरुषार्थ किया हुआ, मेहनत किया हुआ, कमा के खाना, और उनका यज्ञ के प्रति इतना प्यार, इतना प्यार। कल ही हम सुन रहे थे कि उनकी भंडारी और भंडारे पर इतना अटेंशन रहता था, इतना अटेंशन रहता था कि ये दो चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वो अथक बनकर के सेवा करती थी, कहीं रुकती थी ना तो सोचती थी ये भी टाइम वेस्ट है कि मैं नाश्ता करूं, रास्ते में नाश्ता करती थी। इतना अपने लिए भी टाइम नहीं देती थी, वो हर समय सेवा 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 सेवा। और कोई भी आता है तो उसकी सेवा न करे ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी थकी हुई होगी लेकिन जब तक कथा नहीं करेगी तब तक वहां पर भोजन नहीं खाएगी। तो दादी की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिर मैं गुलजार दादी को देखती थी तो उन्होंने अपने आप को मिटाया था, मैंपन को जिसने पूरा गलाया था कि मैं गुलजार हूं, उसको पूरा समर्पित कर दिया था। ये बाबा का रथ है तो इस रथ से वही होना चाहिए जो बाबा जीवन में करते। बाबा के अलावा उनके जीवन में कोई नहीं था। और इतने दुनियावी बातों से इनोसेंट शायद ही कोई होगा। यज्ञ ही उनका संसार था, यज्ञ से जो सीखा वही संसार था। बाहर की कोई भी बात, दुनिया की कोई भी बात उनके जीवन में नहीं थी। तो पूरा मैपन को गला दिया था दादी ने। इसीलिए लोग भी उनको देख करके क्या बोलते हैं, ये बाबा वाली दादी है। अगर आपने उनके क्लास भी सुने होंगे ना तो अव्यक्त वाणी से ही उनके क्लास होते थे, जो बाबा बोले हैं वही सुनाते थे, अपना कुछ नहीं सुनाते थे। और उनको जीवन में यही था कि यज्ञ के सब वत्सों को खुश देखना है और खुशी बांटनी है। इतनी बड़ी दादी थी लेकिन हमने उनको देखा, एक अज्ञानी से भी मिलती थी तो कैसे पहला पाठ तो ऐसे ही पढ़ा देती थी, ऐसे ही पढ़ा देती थी। तो बाहर वालों को कैसे अपना बनाना, कैसे भगवान का दिया हुआ प्यार, सच्चा प्यार बांटना और वो सच्चे प्यार की अनुभूति कराना, वो दादी के जीवन में हमने देखा। तो सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। बाबा यज्ञ में उन विशेषताओं को यूज करता है। तो समय नहीं है, नहीं तो हमारे दादाएं भी है। ये तो इनका हमने शॉर्ट में जस्ट सुना दिया लेकिन इनके जीवन के हर पन्ने को हमने बहुत प्यार से आगे से देखा है, अनुभव किया है। तो यही हमारे यज्ञ की सच्ची 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 कोडली है, मीन्स सच्ची डायमंड्स है। इनके जीवन को देख करके अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी डायमंड जैसा जरूर बनता है। ओम शांति।
सचमुच हमारे यज्ञ के आदि रत्नों को देख करके अपने जीवन को दिव्य गुणों से कैसे सजाना, वहां से गुण रूपी मोती कैसे चुगना, इसके आप एग्जाम्पल हैं। और अनुभव हम समझते हैं कि एक गाथा की तरह होता है लेकिन सागर को गागर में समाते हुए दीदी ने हमारे समक्ष रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बाबा की याद में बैठकर क्लास संपन्न करते हैं।